أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن الرحمن علمه القرآن علم القرآن الرحمن یعنی کہ جو تخلیقی نظام کو بنانے والی ذات اور ہستی ہے. رحمان کا یہ بات ہم کئی دفعہ بتا چکے کہ اس کا مادہ رحم سے ہے، لہٰذا یہ تخلیقی نظام کی بناوٹ پہ پوری سورت کا نام بھی رحمان رکھا ہے. اس سورہ میں اللہ رب کریم اپنا نظام تخلیق جو ہے وہ ہم پہ واضح کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، تو نائب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اپنے رازوں سے آشنا کریں گے نا. اب یہ جو رحمان کہہ کے متوجہ کیا کہ میں ہوں اس تخلیقی نظام کو بنانے والا، اور اس تخلیقی نظام کو سمجھنے کے لیے علم القرآن، کیا جو ڈاکیومنٹ درکار ہے وہ قرآن ہے. وہ ڈاکیومنٹ جو اس تخلیقی نظام کو سکھائے گا، آپ کو بتائے گا، جو اس کا مینول ہے، جو پروڈکٹ کا مینول ساتھ میں ملتا ہے، آپریٹنگ مینول، وہ ہے قرآن. قرآن کا لفظی مطلب ہے وہ چیز جس کو پڑھا جاتا ہے. کیا کہا؟ کہ وہ پڑھنے والی چیز کا علم دیا، علم القرآن، سکھا دیا ہم نے کیا چیز، اس تخلیقی نظام کے متصاد جو ڈاکیومنٹ دیا گیا ہے، جو پورا آپریٹرز مینول دیا گیا ہے، وہ اس کو بتا دیا، بتایا جا رہا ہے. اب یہ دو جملوں کی بابت جب ہم غور کریں گے اور پھر اس کو اگلے آیت سے جوڑیں کہ کیا خلق الانسان، کیا خلق الانسان، اس نظام کو چلانے کے لیے ہم نے تخلیق کیا. تخلیقی نظام کی بات شروع ہوئی، اس کا ڈاکیومنٹ، اور پھر انسان کی بات آئی، اور اس کو کیا خوبی عطا کی، علمہ البیان، کیا اس کو سکھایا، کیا بیان کرنا. اب آپ نے اس کو بولنا لیا، آپ بولتے کب ہیں؟ جب اس کی پوری وزڈم آپ کے پاس ہو تب بولنا چاہیے. ہم بغیر سوچے سمجھے بولنے کی بات کو بھی بیان کہتے ہیں. نہیں، وہ صرف بولنا تو ہو سکتا ہے، لیکن بیان جو ہے وہ بڑا سوچا سمجھا اور نپا تلا ہوتا ہے. غور کریں، لفظ بیان کی باریکیوں پہ تفکر کریں تو علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھا دیا. یعنی یہ صلاحیت خلق الانسان کے فوراً بعد بیان ہو رہی ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی اور اس کے اندر بات کو سمجھنے کی، بات کو تولنے کی، بات کو جانچنے کے بعد اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی اس میں فراہم کر دی گئی. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرما رہے ہیں، الشمس والقمر بحسبان، یعنی شمس اور قمر حساب کے ساتھ، اپنے اپنے حساب، دونوں حسبان، دونوں مادہ یعنی جمع کا صیغہ آ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ اپنے اپنے حساب کے ساتھ چلیں گے. کون؟ روح اعظم اور روح انسانی. والنجم والشجر یسجدان، نجم روح حیوانی کا درجہ، शजर मादी वजूद, यानी आपका ये जो निचला दर्जा है जिसे हम हैवानी सतह कहते हैं वो असल में जुड़ी हुई है नबातात की सतह पे। आपकी खुराक देखें क्या है, नबातात। आप खुद अपनी ग्रोथ पे गौर करें तो आप एक शजर की तरह बढ़ते फलते फूलते हैं और आगे दोबारा सीड बनाकर, तो क्या ये सारा निजाम आपके अपने वजूद पे की दलील है या नहीं? दाल कहना चाह रहा था, वो मैंने कहा दूसरी तरफ देना चला जाए। यानी कि वह नजमो वह शजरा वह शजरो यस जुदान, यानी दोनों, यानी रूह हैवानी की सतह पे क्या है, यू आर सपोज टू सबमिट यस जुदान, ये दोनों जिस्म भी और रूह हैवानी भी, इन दोनों दर्जों पे आपको सरेंडर करना है, सबमिट करना है। फिर उसके बाद रूह इंसानी और रूह आजम जो है वो अपने हिसाब से इस तख्लीकी निजाम की तरफ आपको लेके चलेगी। इतनी बात बताकर अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि वह समा रफाहा व वदअल मीज़ान, और हमने शऊर के दर्जात मुकर्रर किए और उनमें एक बैलेंस रख दिया, उनकी डिजाइनिंग वजा करना, यानी उनकी बनावट ऐसी बनाई कि वो एक मीज़ान पे कायम हो गए, एक बैलेंस पे कायम हो गए। अगर आप कहीं भी किसी स्टेज पे भी बैलेंस आउट करते हैं तो सिस्टम टूटने लगता है। ठीक है, अला तत्खौफिल मीज़ान, लिहाजा खबरदार मीज़ान पे, मीज़ान में, फिल मीज़ान, तत्खौ तत्गा करना यानी जबरदस्ती उसे एक तरफ झुका देना, ये आपके जहन को कहते हैं जी कुरान में न्यूट्रलिटी का कहां जिक्र है। मैं ये मिसाल अर्ज कर रहा हूं कि ये देखें, मीज़ान का लफ्ज कुरान में न्यूट्रलिटी की तरफ इशारा नहीं है, तो क्या है? मीज़ान कहते किसे हैं? जब आपकी न्यूट्रलिटी और यानी सॉरी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएंगे तो क्या स्टेट बनेगी, क्या हालत कायम होगी कि तराजू की डंडी सीधी हो जाएगी। ये कैफियत जो है, अगर वो बाट का सिरा नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिविटी है, अगर दूसरी तरफ जा रहा है आप कहते हैं ये पॉजिटिविटी है। तो न्यूट्रलिटी क्या हुई, आप देखें कि दो आयात जो हैं कि इस तरफ कहा कि शऊर को हमने बुलंद कर दिया, यानी कि उसको आपके ऊपर सवार किया, यानी आपके जिस्मानी निजाम से ऊपर है ये सारा निजाम रफा, और फिर इसको बड़े बैलेंस के साथ बनाया। लिहाजा अला तत्गौ फिल मीज़ान, अला तत्गौ फिल मीज़ान, और आगे क्या कहा, व अकीमुल वज़्न बिल किस्त वला तुख्सिरुल मीज़ान, क्या कहा, कायम करो, अकीम कायम करो, किसको, वजन को, बिल किस्त, किस्त कहते हैं अदल को, वला तुख्सिरु उसमें खसारा मत करो, किसमें, मीज़ान में। ये बातें तीन आयात में समा के हवाले से आई हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को नोट फरमाएं। सिग्निफिकेंस ये है कि आपके शऊर में सारा तोल का निजाम चलना चाहिए, जांच का निजाम आपके शऊर में चलना चाहिए। फिर फरमा रहे हैं कि वल अर्दा वदा हल लिल अनाम, अब हमारे यहां तर्जमा क्या कर दिया कि और जमीन को बनाया तुम्हारे जानवरों के लिए हैं, वजा करना। अभी देखे ना यहां पे आया वह वजा वदाल मीजान पीछे गुजरा
जी सर।
तो यहां पे अर्द को आपने लिल आनाम, आनाम का मतलब आपने क्या कर दिया मवेशी जानवर हैं। नहीं ये असल में देखें कई जगह आपने अलिफ नून ऐन अलिफ मीम वाला इनाम जो है उसका भी तर्जमा मवेशी किया हुआ है। नोट करें ये वही कैफियत है कि हैया ला सला आ जाओ वहां दो चश्मी है वाला तर्जमा डाल के सारा निजाम आजान का पूरा निजाम उसके मीनिंग बदल दिए। क्या सलीका है। अब देखिए कि वल अर्दा वदाहा उसको बनाया लिल आनाम स्क्रीन को बनाया ताकि तुम्हारी तस्वीर उस पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके, वाज़े तौर पे डिस्प्ले हो सके। नाम रख रहे हैं ना
जी सर। जी सर
गौर करें फीहा। अब जब आप इस सारे सिस्टम को जो अल्लाह ने बयान किया इन 10 आयात में उसके बाद देखें क्या फरमा रहे हैं फीहा फाकिहतुन व नखलो जातुल अकमाम वल हुब्बु जुल असफ व रिहान। अब ये इसके अंदर यानी आपका एक शौरी निजाम और एक आपका जिस्मानी निजाम और एक स्क्रीन जिसके ऊपर आपको डिस्प्ले होना है, लेकिन साथ में कहा कि पीछे मीजान को नहीं खराब करना। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा फीहा फाकेहतुन। फाकेहा कहते हैं ऐसे खाने पीने को जो लज्जत के लिए खाए जाएं। एक तो आम होता है एक फाकेहा होता है। तो आम का मतलब है रेगुलर खाना जो आप न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको तो आम कहेंगे, और जो लज्जत के लिए इस्तेमाल करेंगे जैसे फर्ज करें मेहमान आते हैं तो आप उसके सामने कुछ वो रख देते हैं खाने पीने की चीजें, बादाम हो गए मूंगफली हो गई तो चलगोजे हो गए तो रेवड़ियां हो गई, तो इस तरह की मतलब टूंगने की चीजें वो बैठे गपशप भी हो रही है थोड़े थोड़े बीच में से मुट्ठी में लेके आप एक एक दाना, इसे फाकेहा कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं ये बतौर न्यूट्रिशन या बतौर रेगुलर फूड नहीं ले रहे। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं असल में वल अर्दा वादा हल लिल आनाम कह के कहा कि फीहा फाकेहा तुन। क्या कहा इसमें है फीहा। अब किस में है बाहर जमीन पे देखें बिल्कुल है, बाहर के जाविये में भी है और बातिन के जाविये में भी है। यानी आपको ये ऐसे ख्यालात आते हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं। वह नखलो जातुल अकमाम नखल किसे कहते हैं हमने खजूर माना हुआ है मतलब है तनावर। यानी बास थॉट्स आपके होते हैं जिनको आप टूंग रहे हैं, बास होते हैं जो तनावर होते हैं जो नुमाया होते हैं जो प्रोमिनेंस रखते हैं। जातुल अकमाम क्या मतलब हो गया मतलब अकमाम वाली खजूर है। अब देखे ना यानी के पूरा निजाम आपकी नजर से जहन से गुजर रहा है या नहीं कि खजूर के दरख्त पे गुच्छे लगे होते हैं। अब आपका एक ख्याल ऐसा निकलता है जैसे गुच्छा पूरा हो। अब क्लियर हो रही है बात वल हब्बो जुल असफ व रिहान उसमें क्या है हब किसे कहते हैं और जुल अस्फ किसे कहेंगे? रिहान जो है ये मतलब है उस बात की, उसमें मतलब है वो क्या कहते हैं, बात लिपटी हुई बातें होंगी, लिपटी हुई। जुल अस्फ यानी किसी चीज में उसको लपेटा गया होगा, जैसे होता है ना बाज लोग बात करते हैं वो बिटवीन द लाइन अंडरलाइन मीनिंग्स को अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं, तो आप लफ्ज सुन रहे होते हैं लेकिन वो अंडरलाइंग मीनिंग्स क्या हो रहे होते हैं, ये है असल में जुल अस्फ यानी लिपटी हुई बात। हम इधर क्यों नहीं जाते, क्योंकि गौर व फिक्र की तरफ इशारे हैं। हम इसे मादी मजाहिर समझ के और हैरान हो रहे हैं कि लमिया मुझे खजूर क्यों दिखा रहे हैं। तख्लीकी निजाम की बात हो रही है, बात आके खजूर पे मुक गई और उसके अस पे मुक गई और उसके छिलकों पे खत्म हो रही है, ये क्या बात हुई? अकल मानती है इस तर्जमे को? चूंकि नहीं मानती, लिहाजा हमें चाहिए कि थोड़ा सा जाविया नजर तब्दील करें और इन अल्फाज के मतलब इसको मेटाफर मानकर, इसको मेटाफर मानकर आप जरा एक मिनट के लिए लगाकर तो देखें अपने आप पे कि बात अल्लाह क्या समझा रहा है, और वो जो बात समझा रहा है जिसकी बात हो रही है कि तख्लीकी निजाम और उसको मैंने पढ़ना सिखा रहा हूं और उसको तख्लीक किया इंसान को ताकि वो ये सारी गेम समझे, बात ये हो रही है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुम तुकज्जिबान, ये 41 दफा ये आयत रिपीट हुई है। मैं एक दफा इसकी वजाहत कर देता हूं, फिर बाकी जगह हम सिर्फ इसका तिलावत करके गुजरते चले जाएंगे। फा पास, बा दोनों, अला बात, रब्बे को हैं अपने रब की, मा किस किस, तो कज़्ज़बान हैं दोनों मिलकर, जमा का सीगा आ गया, नून आ गया, क्या मतलब हुआ? हमने कर दिया और तुम दोनों, अब ये तुम दोनों कहा है ना, तो तुम दोनों कौन है? अब मैं सुन रहा हूं तो ये मुझे कहा जा रहा है तुम दोनों, तो मैं दोनों कौन हूं? मेरे साथ जिन भी सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह है, तो ये दोनों क्यों कहा, सब क्यों नहीं कहा? इसको शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखें फा बे आई अलाद, हम दोनों कौन है, मेरा जाहिर और मेरा बातिन। गॉड इज एड्रेसिंग अस ऑन बोथ द लेवल्स, हमारे जहन के ऊपर के लेवल को और अंदर के लेवल को, दोनों को एड्रेस करके कह रहा है तुम दोनों। और लफ्ज फे आया, ये बड़ा मानी खेज है। अल्लाह ने ऊपर बात बताई कि दिस सिस्टम आई हैव डिवाइज्ड, हाउ कैन यू हैं पास, लिहाजा तुम कैसे कर सकते हो इनकार मेरी बातों का? आई एम द डिजाइनर, आई एम द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, हाउ कुड यू डेयर टू निगेट इट? हमने तर्जमा कर दिया और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? नेमत का लफ्ज नहीं है इसमें, नेमत का लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है। अला कहते हैं, जैसे कोई कहा है, यार तुम किस किस बात को जुटलाओगे, तुम किस किस चीज को मना करोगे? अब ये बात और चीज ये दोनों को मिलाएं तो एक जनरल सेंस बन रही है कि अल्लाह की कौन कौन सी बात को, कौन कौन सी चीज को तुम झुटला सकते हो, हैं? ठीक हो गया जी? फिर दोबारा आ गया। अब दोबारा क्या आया, इतनी बात बताकर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, खलक अल इंसाना मिन सल सालिल कल फखार, बनाया इंसान को बजनी मट्टी से। सलसाल का लफ्ज जो है ये मट्टी के लिए भी बोला जाता है, खनखनाती, कल्फखार यानी के खिला के अंदर कुछ हवास भर दिए। खलकल इंसाना, हमने इंसान को ऐसे तखलीक किया जैसे मट्टी में खनक पैदा हो जाए। अब जरा देखेंगे सेमिलीट्यूड हुआ या ना हुआ, एक मेटाफर हुआ या ना हुआ। क्या कहा? खलकल इंसाना, हमने इंसान की तखलीक कैसे की? मिन मिन में से, किस में से? सलसालिल कल्फखार, एक वॉइड, एक खिला के अंदर हवास भर दिए। अब चूंकि सलसाल का लफ्ज आया लिहाजा कोई ठोस चीज होगी जिसके अंदर गूंज पैदा होती है। यानी अब यहां पे कितना वाज़े हो गया, वह खलकल जाना में मारे जिम मिन्नार, आग में से मर्ज, मर्ज मारेज लेकर उससे जान बनाई यानी के जिन बनाए। अब यहां पे लव जान का मतलब आप जान क्यों नहीं ले रहे? क्यों जी? लव साफ लिखा हुआ है ना, जान। अब हमने इसको यहाँ पे जिन्नात के लिए इस्तेमाल किया, एक इशारा आपकी जान की तरफ भी तो है कि इसके अंदर अब नार में से मारिज क्या है। मिन मारिज, मिन नार, दो दफा मिन आया, बहुत तवज्जो से सुने। यानी अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो वही कि जिन्नात को हमने आग के शोले से पैदा किया जो हर तर्जमे और तफसीर में आपको मिलता है। जरा थोड़ा सा एंगल बदल के देखें, क्या यहाँ पे बात हो रही है खलकल इंसान की, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी इंसान के अंदर जो जान है उसमें आग में से मारिज क्या है? आग में से, आग में से। और करें, इस तरफ कभी तवज्जो नहीं गई होगी। यानी आग में क्या चीज होती है? हीट होती है, आग में रंग होता है। आग में तीन चीजें हैं ना, एक उसका रोशनी है, एक उसका रंग है और एक उसकी हीट है। अब ये आप देखें कि आपका बॉडी टेम्परेचर परमानेंट रहता है।
जी सर।
कभी सोचा को जी? इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं गया। हम तो जिन्नात की जान को आए हुए हैं, बात हो रही है खलकल इंसान की में, और आगे कहा कि तुम्हारे अंदर जान जो है वो पैदा की हमने आग में से। कोई एक कंपोनेंट लिया तो आग में से कौन सा कंपोनेंट आपके अंदर है? तो मैं समझता हूं आपके हाथ, देखे ना सर्दी लगती है तो आप हाथों से को रगड़ते हैं, गर्मी पैदा होती है, फील करते हैं अपने बदन की हरारत को। गुस्से में, प्यार में, मोहब्बत में आपके बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं, हाँ या नहीं? चलें ये नुक्ते पे मजीद खुद गौर कीजिएगा। फबे आई लाए रब्बे को मातु का जबान, रब्बुल मशरकैन व रब्बुल मगरबैन। ये एक सवाल बड़ा आता है कि जी अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं दोनों मशारिक का और दोनों मगारिब का रब हूँ, पालने वाला हूँ, उनको वसाइल फराहम करने वाला हूँ, तो ये दो मशरक कौन से हैं? अब अगर आप अपने इनर के मशरिक की तरफ तवज्जो दें तो एक खारिज का मशरिक हो गया, तो दो मगरिब हो गए, दो मशरिक हो गए। अब मशरिक कहते किसे? वो सिमत जहां से जहन में ख्याल तलु होता है उसे क्या कहेंगे? उसी को मशरिक कहेंगे, दो सतह पे है वो, उसकी दो सतहें हैं। मशारिक नहीं कहा, क्या कहा? रब्बुल मशरिक नहीं कहा, रब्बुल मशरिकैन, दोनों मशारिक का और दोनों मगारिब का। देखे ना, आपके जेन में थॉट तुलू होता है, वो एक सिमत से तुलू होता है। आपके जेन में इसका मतलब है कि दोहरा निजाम चल रहा है ना, एक बात आपके सामने खारिज में तुलू हो रही है, और एक चीज मैंने आपको बड़ी वजाहत से अर्ज किया था कि थॉट की चार सोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो ये जहां डूब रहा है, यानी ख्याल आया, जहन में प्रोसेस हुआ, अपना काम उसने परफॉर्म किया, और वो फिर क्या होता है, जहन से हजफ हो जाता है। फबिया लाए रब्बे को माँ तो कसे बान, जरा गौर कीजिए कि एक एक बात के बाद अब अल्लाह रब करीम फबिया लाए रब्बे को माँ तो कसे बान कह रहे हैं। इसकी डेप्थ का एहसास कीजिए। मर जाल बहरैन यल तकियान, मर्ज होना, अंग्रेजी के का जो लफ्ज मर्ज है, मुझे लगता है वो अरबी के इसी लफ्ज से लिया गया, यही मतलब है जो अंग्रेजी में मर्जर को कहते हैं। बहर कहते हैं, अब ये मेटाफर के तौर पे लें तो पूरी सिफात का समुंदर है। इल्म को भी बहर कहते हैं, ठीक है, यानी वो बड़ा मुतबहर आलिम है, यानी पूरे समुंदर जैसा इल्म है उसके पास है। ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। अब जरा इसको इधर लगा के देखें तो आप एज ए इंसान अल्लाह की सिफात का एक ठाठे मार्तबा समुंदर ही तो हैं। यल तकियान, मिलने के लिए। अब आपने इसका तर्जमा कर दिया कि जहां दो समुंदर मिलते हैं जी, मेरे पास इसका तर्जमा लिखा है कि ही हैज लेट फ्री द टू बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर मीटिंग टुगेदर। यल तकियान, मिलने के लिए क्यों नहीं किया? और ये जो हम वो तस्वीरें देखते हैं कि वो समुंदर का पानी जो है, वो ये बिल्कुल वहां भी लागू होता है कि पानी के अंदर ऐसी आयनाइजेशन होती है कि एक किस्म का पानी दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता। अगली आयत में वाजे कर दिया, बैनहुमा, उन दोनों के बीच में बरज़खो ला यबगियान, बरज़ख है, पर्दा है, और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। गौर करें आप, अपना अब्बा ने ये मिसाल दी है अपनी एक तकरीर में, आप दोनों हाथ मिलाएं, कितना भी जोर दें, कितना भी जोर दें, क्या होगा? क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे में जज्ब हो जाएंगे? आपका हाथ नैनोमीटर के फासले पे दूसरे हाथ को फासले पे रखेगा। क्या मतलब हो गया? ये अल्लाह रब्बे करीम आपको अपनी तखलीक के राज बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा एक ही खलकल इंसान से शुरू हुई 14 से, ठीक है। बैनहुमा बरज़खो ला यबगियान, फबिअय्यि लाए रब्बे को मा तुकज़्ज़िबान। फिर अगला क्या बता रहे हैं कि यखरुजो मिन हल लौलो वल मरजान। अब लूलू क्या होता है और मरजान क्या होता है, किस में से निकालते? अब जाहिरी तौर पे समुंदर में से निकलते हैं, अब लूलू कहते हैं पर्ल्स को, मोतियों जैसे गोलाई रखते हुए, और सफेद क्या चीज हो सकती है, और फिर मरजान सुर्ख रंग है घूंगा, किसमें से निकालते हैं वो, बीच में आ गया बहर। इस पे मजीद आप खुद तफक्कुर फरमा लीजिएगा। यखरुजु मिनहल लूलू वल मरजान फबेला रब्बे, यानी कि वो जो आपके अंदर निजाम फिक्र चल रहा है उसका हासिल बताया। अब अगली आयत बड़ी मानी है, इसे वलहुल जवारिल मुनशाता मुनशातु फिल बहरे कल आलाम, मैं इसको कल आलाम अलम से लूंगा, झंडे की तरह लहराता हुआ, ठीक है, गड़ा हुआ या उठा हुआ, फिल बहरे, क्या वह लहुल जवारिल मुनशाते, और उस हमने तर्जमा कर दिया उसके हैं ये सारे जो जवार, कुर्ब को क्यों नहीं कहते, मुनशात हमने कह दिया वो सेलिंग शिप्स, और कल आलाम का तर्जमा आपने कर दिया लॉफ्टी, ऊपर उठे हुए पानी में कश्तियां तैर रही हैं, वलहुल जवारे, आपने जवारे रहमत सुने
जी सर,
तो इसका तर्जमा क्या मतलब बना, रहमत की कश्ती हो गया, नहीं वहां तो आप प्रिसेंट्स लेते हैं जो रहमत की करीब की कुर की जगह है, जहां रहमत बरस रही है, जहां रहमत है उस जगह का नाम जवार रख रहे हैं, तो यहां पे क्यों क्यों आपने तर्जमे में कश्ती घुसेड़ दी, क्योंकि आगे समझ नहीं आई कि फिल बहर से क्या मुराद है और कल आलाम से क्या मुराद है। हमसे एक दफा हजूर मुर्शिदे करीम ने यह तशरीह करवाई थी, शायद की तरबियती वर्कशॉप में ये आयत दी गई थी कि कहा था कि इसका तर्जमा करें, गौर करें जरा पूरे कुरान में से यही आयत क्यों चुनी उन्होंने, ताकि लोगों के जहन खुले, लेकिन हम लोग अपनी डफली बजाने से कब बाज आए, कभी भी नहीं, लिहाजा वही कश्तियां तैरा रहे हैं हम जहां समुंदर में, फिल बहरे कल आलाम है वो जिस पे झंडे लगे हुए हैं, झंडे वाली कश्ती, फबे ये लाए रब्बे को मा तो कज़बान कुल्लो मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना। अब बज़ाहिर ये आयत जो है इंतहाई अफसरदा कर देने वाली है, बंदा सोचता है जब सारा निजाम फिर खत्म हो जाएगा, हर चीज फना हो जाएगी, तो फिर ये सारा खेल क्या हुआ, उसका जवाब अगली आयत में दिया, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, क्या कहा, लेकिन बाकी रहेगा तुम्हारे रब का चेहरा जो बड़ा जलाल और करम करने वाला है। अब मुझे बताएं इसका क्या मतलब है कि अल्लाह अपना अपना जिक्र कर रहे हैं कि मैं बाकी रह जाऊंगा, बाकी सब कुछ मैं लपेट दूंगा, नहीं मेरा नहीं ख्याल। अब जरा वजूहात पे गौर करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने मोनालिसा की तस्वीर देखी है, मैं कहूं कि ये लियोनार्डो डा विंची की तस्वीर है, क्या आप इख्तलाफ करेंगे,
नहीं सर।
क्यों, क्योंकि वो तस्वीर का बनाने वाला लियोनार्डो डा विंची है, मैं अगर कहूं कि लियोनार्डो डा विंची की तस्वीर बाकी रहेगी, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, लियोनार्डो डा विंची तो बाकी रहेगा ही रहेगा, उसकी बनाई हुई तस्वीर भी तो बाकी रहेगी, जरा इस तरह से इसका तर्जमा करके देखें, वह यब का और बाकी रहेगा, क्यों बता रहे हैं लामिया खास तौर पे। अब एक मिसाल और सुन लीजिए, आप गौर करें, दुनिया में लोग पैदा होते हैं, फौत होते हैं और गायब हो जाते हैं, हाफ़िज़ों में से भी और वैसे भी। अब जिसका चेहरा अल्लाह ने खुद बनाया, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम, उनका नाम नामी बाकी है या नहीं? तो ये तर्जमा हम क्यों नहीं लेते कि जो चेहरा अल्लाह तबारक व ताला, जिसका मेकअप अल्लाह खुद करेगा बस वही बाकी रहेगा, बाकी तो सब उस चेहरे के लिए वसाइल हैं। फबिअय्यि लाय रब्बिकुमा तुकज्जिबान यसअलुहु मिन यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फिशान। यसअलुहु उसी से सवाल करते हैं मन, सब कुछ ठीक है, फिर समावाते वलर जो कुछ के जमीनों और आसमानों में, वो असल में उसी से सवाल करते हैं या उसी के साइल हैं, उसी के मंगते हैं, उसी से उनकी मोहताजी जुड़ी हुई है। कुल्ला हर यौमिन हालत में हो वाफिर शान, वो अपनी ही शान से हैं जलवा फ्रोज रहता है। फबिअय्यि लाय रब्बिकुमा तुकज्जिबान सनफ़रगु लकुम अय्युहस सकलैन सनफ़रगु लकुम, अभी तुम्हारे लिए हम फारग होते हैं, अय्युहस सकलैन है दोनों, अब यहां लफ्ज सकल पे गौर करें, अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं आई गेट डाउन टू यू, जो तुम अपने बोझ से नीचे गिरे हुए हो, अब दोबारा सकल एन दोनों, कौन दोनों? यानी अगर आप नीचे गिरे और रूहे हैवानी और रूहे वो जो जिस्मानी सता है उस पे आप यस जुदान के बजाय तगा पे उतर आए तो, और आपके अंदर कसाफत पैदा हो गई, सकल पैदा हो गया, तो अल्लाह क्या कह रहा है? अब हमने कर दिया कि जी वो हमारी तरफ रजू करेगा, तो आप खुद अपनी तरफ रजू क्यों नहीं कर रहे? सनफ़रगु लकुम, तुमको चाहिए कि तुम अपनी तरफ, अपने सकल की तरफ मतवज्जो हो जाओ, ये क्यों नहीं कर रहे हम? अब देखे ना, पीछे जो बात चलती आ रही है उसमें तो ये मफहूम ज्यादा जानदार नहीं बनता। फबिअय्यि लाय रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अब आई बात, या माशरल जिन्न वल इंस इन्नस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक्तार समावाते वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अब यहां पे आके जिन्नात का वो तस्कर आया और कहा क्या गया, जो तर्जमे गलत हैं उसकी तरफ तवज्जो दिला देता हूं, बाकी आसान है। अक्तार समावाते वल अर्द क्या है? कुतर, कुतर उसका एक सुफियर है ना, सुफियर का एक कुतर होता है, उसका एक डायामीटर होता है, एक रेडियस होता है, समझ आ रही है बात की? यानी उसका फैलाव जो है वो उसका एक रेडियस बन गया ना, जैसे गोलाई है। अब आपके शऊर की एक लिमिट है, वो आगे से किसी सेंट्रलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके बॉडी की भी यही हालत है, स्क्रीन की भी तो यही हालत है ना
जी सर।
अब अल्लाह क्या कह रहा है? तनफुजू, तनफुजू का लफ्ज नफूज से है या नहीं?
नफूज
है, नजर आ रहा है नफज। फिर अल्लाह कहता है फनफुजू, फिर कहता है ला तनफुजूना, इल्ला बे सुल्तान, क्या फरमा रहे हैं? हमने तर्जमा कर दिया, तुम जमीन और आसमान के किनारों से बाहर नहीं निकल सकते, निकल के दिखाओ, फनफुजू निकल के दिखाओ, ला तनफुजू ना, तुम नहीं निकल सकते इल्ला बे सुल्तान। तो तर्जमा क्या बना कि तुम जमीन और आसमान यानी कि जो अल्लाह ने शऊर बना दिया, जो स्क्रीन बना दी, आप उसमें अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हो सकते, क्या फरमा रहे हैं? भाई कोई बच्चा माँ के पेट में जबरदस्ती पैदा होके दिखा सकता है? तो ये सुल्तान क्यों नहीं मानते कि आप, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया, आपकी रूह को ये अथॉरिटी दी कि वो इसमें दाखिल हो सके, नफूज कर सके, क्यों हमने इसका तर्जमा बाहर निकलना किया, क्यों उल्टा किया हुआ सारा कुछ?
जी सर, ये तो बिल्कुल उलट गया।
जब आपकी सोच अपने से बाहर जाने की तरफ मतवजो की जाएगी, बजाय इसके कि वो आप अपने अंदर अपने आप का उतरना देखें, तो मुझे बताइए कि कितना फर्क पड़ेगा।
जी।
मैं आपसे कोई अपने पास से अल्फाज नहीं बना के दे रहा, मैं सिर्फ मतवजो कर रहा हूं कि प्लीज इन लफ्जों का असल तर्जमा देख लें कि अन तन फुजू मिन अकतार समावात वल अर्द फन फुजू ला तन फुजूना सब 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 सब। ये दो के लिए नहीं है, ये बात हो रही है या माशरल जिन्न वल इंस। अब यहां पे जिन और इंस दोनों को एड्रेस करके कहा गया है कि तुम ये जो मेरा बनाया हुआ निजाम है, समावात और अर्द है, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें ये इख्तियार ना दे सका। फबे लाए रब्बे को मातु कज़िबान, मेरा ख्याल है यहाँ रुक जाएं क्योंकि ये
78
तो कितनी हो गई, 34 ठीक है
जी सर,
क्योंकि आगे से मौजू बदल गया ना।
जी सर जी,
तो मेरा ख्याल है यहीं रुक जाते हैं, फिर कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो।